श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद जिनका वर्णन श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके मन की इच्छा मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन की जो अंतरंग इच्छा है उसको एक मूर्त स्वरूप दिया। महाप्रभु के मन की इच्छा क्या है? प्रत्येक जीव इस कृष्ण भावनामृत का स्वीकार करें। तो कैसे करेंगे, कौन सी प्रणाली अपनाएंगे, कौन प्रचार करेगा, कैसे प्रचार करेगा, किस ढंग से करेगा, ये सब देखने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति ने अपने ऊपर ली और वो है श्रीमद् रूप गोस्वामी। तो इसलिए चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति, ऐसे रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरणों पर स्थान देंगे। एक अन्य प्रार्थना में कहा गया है, आददनास्तृणम दंतैर इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोजम धूलि श्याम जन्मनी जन्मनी। मैं दांत में तृण पकड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता हूं, आददनास्तृणम दंतैर इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोजम धूलि श्याम जन्मनी जन्मनी, उनके चरणों की धूलि बन जाऊं मैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जो रूप गोस्वामी विरचित उपदेश अमृत ग्रंथ, उसका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में जो एक बीबीटी का बुक दिया है, ग्रंथ दिया है, उसमें वो कहते हैं कि ये उसका पहला वाक्य ये है, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन रूप गोस्वामी प्रभुपाद के सुपरविजन, उनके निर्देशन के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार चल रहा है। और इसलिए हमारा नाम एक संघ के रूप में होता है, रूपानुग समाज। हम सब रूपानुग हैं और रूपानुगों में जो सबसे उत्तम, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को रूपानुग वराय थे, सबसे अच्छे रूप गोस्वामी के अनुचर, या श्रील प्रभुपाद जी को रूपानुग वर कहते हैं, फिर हम उनके दास, उनके दास। तो ये तो गौड़ीय वैष्णविज्म में, गौड़ीय वैष्णव प्रणाली या समाज में केवल भगवान के दास होने की अभिलाषा नहीं होती, तो उनके दास के दास के दास के दास के दास की दासत्व की अभिलाषा होती है। अभी सनत कुमार प्रभु ने मुझे अपना प्रोग्राम बताया, वो इस प्रकार से है कि हम अभी थोड़ा सा निरूपण इस स्थान का श्रवण करने के बाद हम सब बस लेकर पावन सरोवर जाएंगे, वहां पर स्नान होगा, फिर वहां से नंदगांव जाएंगे, वहां से पावन सरोवर में स्नान, फिर वृंदकुंड में हमारा प्रसाद होगा। तो जहां पर हम बैठे हैं इस स्थली का नाम है टेर कदम। टेर यानी जो ग्वाल लोग जोर से चिल्लाते हैं, और कदम यानी कदम का वृक्ष। एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक उनकी व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखा था, शायद हम भारतवासी इसको इतने ढंग से समझ नहीं सकते, लेकिन कम से कम विदेशी लोग हैं उनको तो ये बहुत चीज अचरज में पड़ने डाली होगी, कि जिस भगवान की हम खोज में हैं वो एक ग्वाल बाल है। जैसे किसी यूरोपियन अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन को कहें कि गॉड इज ए काउहर्ड बॉय, ब्लू कवर्ड बॉय, वो भी घनश्याम, तो कितनी आश्चर्यचकित करने वाली चीज है ये। और आज के युग के हम भारतीय भी, हमने भले भगवान को देखा होगा गोपाल के रूप में, लेकिन भगवान का ऑक्यूपेशन है कि वो गाय को चराते हैं, और कुछ नहीं मिला था क्या कि भगवान बड़े पंडित हैं, भगवान बड़े धनी हैं या। तो एक प्रश्न कई बार लोग मुझसे पूछे, मैंने अपने आप से भी पूछा है, और वो जो अभी आपको मैं पूछने वाला हूं कि भगवान को गाय क्यों प्रिय है। किसी के पास इसका उत्तर है? कोई इसका प्राइस तो नहीं होगा क्योंकि हम यहां ब्रज में हैं, लेकिन आप बिना झिझक के उत्तर दे सकते हैं। एक कह रहे हैं भगवान का नाम गोविंद है जो गाय को प्रसन्न करते हैं, लेकिन गाय क्यों? गाय दूध देती है इसलिए। गलत। गाय माता है? नहीं। गाय गोबर देती है? क्या सही उत्तर क्या है? भगवान को गाय क्यों प्रिय है? दूध से मक्खन आता है। शिवराम प्रभु कहते हैं उनको प्रिय है, बस इसके आगे और कोई उत्तर नहीं है। हाँ, किसको? गाय को? एक बड़े साइंटिफिक भक्त कह रहे हैं कि वो एवोल्यूशन का लास्ट बर्थ होता है, कि गाय के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए गाय उनको प्रिय है। और कोई? गाय के अंदर 33 करोड़ देवता होते हैं, इसलिए गाय उनको प्रिय है। गलत। गाय की पूंछ से भगवान को, वो गाय के भगवान के ऊपर फहराते हैं, फिर गाय के गोबर से उनको नहलाते हैं, इसलिए गाय प्रिय है। गलत। गाय काम धेनु है, मनुष्य समाज की सारी जरूरतें लगभग सारी गाय से पूरी की जा सकती है, जैसे कि दूध दही ऐसे। गलत। गाय माता के समान होती है। गलत। गाय बहुत नम्र है। आपने कितनी गाय देखी है? नंद भवन ये कह रहे हैं कि उनके पिता ने उनको कहा कि आपको गाय पालन करनी पड़ेगी, तो इसलिए उनको गाय प्रिय है। भगवान सोराट हैं। गाय कृष्ण से प्रेम करती है इसलिए। द विनर इज शिवराम प्रभु। ये इस लेटेस्ट बैक टू गॉड इश्यू में किसी ने प्रश्न पूछा है, और इस्कॉन मूवमेंट के सबसे विद्वान समझे जाने वाले लोगों के पास ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसका सादा सिंपल जवाब यह है कि भगवान एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति को अपनी निजी चीजें कोई अच्छी लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती, बस। लेकिन भगवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो किसी से द्वेष नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सारी चीजें एक ही स्तर पर प्रिय है। सब कुछ उनसे आता है, तो थोड़ा तो एक ममत्व, थोड़ा स्नेह है ही, लेकिन अगर उसमें अगर कोई एक विशिष्ट व्यक्ति उनको अगर प्रिय हो तो उसमें कोई गलती नहीं उनकी। हम ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये आपको अप्रिय ये प्रिय नहीं है। और यही बात बारंबार श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों द्वारा बताते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। हम कहेंगे हाँ बहुत बार सुन चुके हैं हम, आपके तात्र में बार बार ये क्यों आता है कि व्यक्ति है व्यक्ति है? क्योंकि आज के समाज में निर्विशेषवाद, नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, ये भक्तिराम स्वामी क्या कर रहे हैं? गौरवाणी का प्रचार कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, अर्थात निर्विशेष शून्यवाद सब जगह पे है। उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कीजिए। तो निर्विशेषवाद यानी अर्थात सब कुछ एक है, निर्विशेष, कोई चीज विशेष नहीं है एक दूसरे से। जो भारत में जो ठीक है या चलता है एटीट्यूड है, आप किसी रेलवे स्टेशन में जाएंगे कि ये गाड़ी 5.5 घंटे लेट है, और आप पूछेंगे क्यों, क्या कर सकते हैं, ये यूपी है भाई, चलता है। जो डाइनिंग हॉल है वो टॉयलेट जैसा दिख रहा है, या जो टॉयलेट है वो और कुछ जैसा दिख रहा है, इंडियन कहते हैं चलता है, क्या तकलीफ है, अभी ऐसे ही होगा। तो ये जो गलत ढंग की जो निर्विशेषवाद की बातें हमारे मन में बैठ गई है, इससे ना तो हमारी भौतिक प्रगति हो रही है, ना तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। और आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी कम से कम भारतवर्षीय लोगों की जो एक जो रोग है, ये डिजीज हृदय का, कि सब कुछ एक समझ लेना, तो ये श्रील प्रभुपाद का एक कार्य है कि इसको वो मिटा रहे हैं, वो निर्विशेषवाद और शून्यवाद। शून्यवाद यानी इस जीवन के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, जिसको बौद्ध मत भी कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो ग्रंथों की जो रचना की, वो खास करके श्रीमद् रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से संचारित होकर उन्होंने किया है। एक उनके निजी सचिव थे, उनको उन्होंने बताया कि जब मैं राधा दामोदर मंदिर में बैठकर बहुत गंभीरता से विचार करता था कि ये कैसे करूंगा मैं, कौन मुझे मदद करेगा, मैं अगर कुछ दूंगा किसी को तो वो समझ पाएगा कि नहीं, तो रूप गोस्वामी की समाधि कुटीर के ठीक, अगर आप राधा दामोदर मंदिर में जो प्रभुपाद जी ने 2 रूम लिए थे, वहां जहां वो रसोई बनाते थे अपनी, वहां बैठकर वो सीधे देखते थे रूप गोस्वामी की समाधि मंदिर को, और वहां बैठकर वो बार बार सोचते थे कि कैसे करूंगा कैसे करूंगा। और प्रभुपाद जी ने एक बार बताया कि एक दिन एक रात स्वयं श्री रूप गोस्वामी, इसको हम सपना नहीं कहते, चैतन्य चरितामृत या बंगाली वैष्णवों की भाषा में स्वप्नेर छले, वो स्वप्न नहीं है, स्वप्न का छल मतलब एक स्वप्न का एक्सक्यूज देकर, उसको वास्तविक दृष्टांत कहते हैं। जब एक मुक्त जीव दूसरे मुक्त जीव को देखता है या उससे कोई आदेश प्राप्त करते हैं तो वो सपना नहीं होता। हम सपने देखते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला बन गया, या मेरे पास ये गाड़ी आई है, या मैं ये डिग्री प्राप्त किया हूं, ये सपना है, त्रिगुणात्मक माया का एक छायाबाजी प्राय, भक्तिराम ठाकुर कहते हैं कि शेर संसार छायाबाजी प्राय, तो ये इनकी छायाबाजी नहीं होती, इट्स नॉट अ प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो। तो इस दृष्टांत में स्वयं रूप गोस्वामी ने कहा, महाराज आप जाइए, पूर्ण रूप से यशस्वी होंगे। और ये आशीर्वाद प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद जी ने जो उनको जो धीरज आ गया कि अब सारा जो गुरु वर्ग है वो मेरे पीछे है, और भगवान कृष्ण भी स्वयं इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं, और इस तरह से वो गए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को जब उनके भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने पूछा कि ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये तो खास करके भक्तों के लिए लग रहा है, तो इसको हम कितना प्रिंट करना चाहिए, 5,000, क्योंकि तभी तो भक्त थे केवल 400-500। प्रभु ने कहा 100,000। बोले इतना कौन लेगा उसको, बोले सबके लिए है, और एक छोटा सा ग्रंथ केवल 11 श्लोक जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम से लेकर सीधा राधा कुंड तक पहुंचाता है, ये उसका स्पेक्ट्रम है, ये उसका उसकी रीच है, ये उसकी पहुंच है ये उस श्लोक की। तो जैसे कि अभी हमने इस षड गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य जिस प्रकार से गोस्वामियों को प्रणाम करते हैं कि यही है गोस्वामियों का काम था, ये गोस्वामी कोई कहीं पे कोई जॉब नहीं मिला, कुछ काम नहीं कर सके, इसलिए एक कॉपिन कंथा पहनकर किसी एक कोने में पड़े हैं और राधे राधे कह रहे हैं, ऐसे नहीं थे। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम, एक एक गोस्वामी मंडलपति श्रेणीम के, कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्राइवेट सेक्रेटरी, अनेक अनेक भाषा में विद्वान, जिसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में कहते हैं कि उनको संस्कृत, उर्दू, अरबिक, फिर बंगाली, मैथिली, कम से कम 8-10 प्रकार की उस समय की भाषाएं आती थी। और उनका काम क्या है, ये जो 8 श्लोक है, वास्तविक इसमें सारे 6 गोस्वामियों का जीवन आता है उसमें। और सबसे प्रथम उनका काम, इनके लिए हम उनको प्रणाम करते हैं, वो है नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो, वो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत निष्णात हैं। क्या करने में, सारे शास्त्रों को लेकर उसका जो सार है कि इस कलयुग में आज के लोगों के लिए क्या आवश्यक है। तो यहां पर ये इनकी प्रिय स्थली है जहां पर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, और आज उन्हीं के अनुग्रह से हमें यहां पर बैठने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए अनुमति मिली है। जैसे ही हम बसेस से उतरे, हमने पहले आशेश्वर महादेव जी का दर्शन किया, तो उनकी कथा ऐसी है कि परजन्य नाम के एक महापुरुष हुए जिनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय वंश में और एक गोप वंश में, और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए आशीश्वर महादेव से प्रार्थना की। आशीष या आशीर्वाद जो प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया आशेश्वर। और ये प्राचीन शिवलिंग है, अति प्राचीन। वृंदावन में जो भी महादेव जी का उनकी जो उपस्थिति है, वो केवल राधा कृष्ण की लीला का ध्यान करने में, उनकी सेवा करने में, और खास करके ब्रज के भक्तों को उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको धीरज देने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए, उनको कुछ सहायता देने के लिए, यही उनका कार्य है। जिस प्रकार से अन्य लोग शिवजी के पास जाकर कुछ भौतिक चीजें मांगते हैं, वैसे ब्रजवास के इच्छुक भक्त या गौड़ीय वैष्णव कभी वो कामना नहीं करते। तो फिर यहां हम देख रहे हैं कि परजन्य महाराज, उन्होंने क्यों एक पुत्र की कामना के लिए उनका यज्ञ किया, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनको जो पुत्र होंगे उसमें एक पुत्र के उनकी पत्नी की गोद में स्वयं भगवान हरि जन्म लेने वाले हैं, तो भक्त कामना नहीं छोड़ सकते। कल ही हम एक भक्त के साथ चर्चा कर रहे थे, दूसरे स्कंद में भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कई लोग कामना या डिजायर, इच्छा लोग कहते हैं ये इच्छा मुझे बहुत त्रस्त कर रही है, इच्छा मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, इच्छा सब दुख का जड़ है। हम ऐसा नहीं मानते। जीव जब तक रहेगा तब तक इच्छा रहेगी, क्योंकि जीव का काम ही है इच्छा को पैदा करना। जो निर्विशेषवादी है, शून्यवादी है, वो इच्छा को मारना चाहते हैं। गौड़ीय वैष्णव प्रणाली में हम इच्छा को नहीं मारते, तो हम क्या करते हैं, उस इच्छा को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। जब तक जैसे जीव अमर है, इच्छा भी अमर है। आप सोच लीजिए, अगर कोई व्यक्ति कोने में बैठकर सोच रहा है मुझे कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये भी तो एक इच्छा हो गई ना, तो इससे छुटकारा नहीं है। और कलयुग के मंदमति, मंद भाग्य, उपद्रुत, हमेशा तकलीफें पड़े जीव, कैसे हम सोचेंगे कि कोई निरीक्ष भावना से हम कोई मेडिटेशन या कोई ध्यान लगा सके। तो इसीलिए इच्छा को केवल भगवत सेवा में जोड़ना, यही एकमात्र उपाय है सभी युगों के लिए, लेकिन खास करके इस युग में वो जो निर्विशेष ध्यान है वो यशस्वी नहीं हो सकता। तो भक्त हमेशा यही इच्छा करते हैं कि जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हो वो हमारे हाथ से हो, जो भी प्रतिकूल हो उसमें हमारी कोई इच्छा ना रहे। तो इसके पश्चात नंद, उपानंद, उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन, ऐसे पांच पुत्र उनको प्राप्त हुए। तो नंद महाराज वो तो मंझले थे, वो तो नंबर थ्री थे, तो फिर वो राजा कैसे बन गए? क्योंकि उनके उदात्त तो गुणों को देखकर, उनके इतने अच्छे गुणों को देखकर बाकी सारे बंधुओं ने सोचा कि नहीं, यही राजा होने के लिए ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं और ज्यादा उपयुक्त हैं। तो इस प्रकार से नंद बाबा, यहां पर उनका राज था, लेकिन बाद में वो अलग अलग जगह पर गए, लेकिन जहां भी गए, जहां पर शक्तासुर, प्रलंबासुर, अलग प्रकार के असुरों ने उनको बहुत कष्ट देने की कोशिश की, फिर घूम घाम के वापस यहां पर आ गए। अब हम जब ऊपर नंद भवन जाएंगे तब नंद बैठक, नंद भवन, हाउ बिलाओ, ये सब अन्य तीर्थों की चर्चा हम वहां पर करेंगे। तो यहां पर भगवान जो स्वयं एक, जो अपने आप को गोपाल बतलाते हैं, उनको गाय चराने में कोई हैज नो शेम, उन्हें कोई ऐसा लगता नहीं कि और कुछ काम नहीं ठीक सके कर सके तो इसलिए चलो गाय चराते हैं, नहीं, गाय उनके लिए बहुत प्रिय है। गाम विंदती इति गोविंद, एक गाम का अर्थ होता है पृथ्वी, एक गाम का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां, और दूसरा गाम होता है गाय, गौ। तो जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बछड़े देते हैं वत्स, गो वत्स चराने के लिए, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब एक बड़ा उत्सव होता है, और फिर उनको एक कंबल, एक लपुटी, एक काठी और ऐसे सब मिलता है ताकि वो अभी जो बच्चा बड़ा हो गया अभी वो गाय की सेवा कर सकता है। तो वो त्योहार होता है गोपाष्टमी का, वो अभी परसों आएगा, तो वो भी बड़ा बड़े धूमधाम से यहां पर मनाते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जिस दिन मदर यशोदा माई ने उनसे कहा कि अभी आपको हम एक कमर देंगे, कंबल देंगे, एक लाठी लपुटी देंगे, फिर आपको कुछ जूते भी देंगे जिससे कि आपको ब्रज के यहां वहां चलने में कोई कष्ट ना हो, तो उन्होंने कहा मैया जूतों की क्या आवश्यकता है, बड़े कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो आपके चरण को लगेंगे और उससे कष्ट होगा आपको। तो उन्होंने कहा फिर वो बात तो ठीक है, फिर मेरी गौओं का क्या, वो तो चली गई ना। तो उन्होंने कहा उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, वो तो चली गई ऐसी। बोला नहीं 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 नहीं, मैं जूते नहीं लूंगा फिर। बोला अरे नहीं कन्हैया ऐसे नहीं करते, जूते आपके पहनने पड़ेंगे। बोले फिर आपको गौओं को भी जूते देने पड़ेंगे। तो हमने सोचा एक तो 9 लाख गाय हैं और 9 × 4, ऐसा नहीं कि दो ही जूते से काम चलेगा, तो इतने जूते कहां से लाएंगे। तो सारे लोग चिंता में पड़ गए कि अभी ये कन्हैया की जो इच्छा है इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। और इसी बीच जो वात्सल्य भाव है वो केवल वृंदावन में या ब्रज में नंद यशोदा बाकी उपानंद अभिनंद यही लोग नहीं, जो गाय है वो भी कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव रखती है, जो बैल है वो उनके प्रति पिता के रूप में वात्सल्य भाव रखते हैं। तो सब कुछ यहां पर एक ही व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है और उसी का नाम है ब्रज। तो सब गायों ने सोचा कि नहीं, हम यशोदा माई को इतना कष्ट उठाने नहीं देंगे। और उन्होंने क्या किया, रातों रात जाकर सब जगह की जो कंकड़ वंकड़ वाला प्रदेश है उसको अपने खुरों से पूरा एकदम जैसे जॉनसन्स बेबी पाउडर ऐसे बना दिया, एकदम मुलायम। प्रभुपाद ने जो अपने मंदिर के लिए जिस स्थान का चयन किया उसका नाम है रमण रेती, रेती यानी सैंड से हमारा चौपाटी बीच, चौपाटी यानी सैंडी बीच, तो ये भी रेती है लेकिन ये रमण करने योग्य, जहां पर कृष्ण बलराम बहुत प्रेम से रमण करते थे। और आप चलेंगे, आपने में से कई ने अनुभव किया होगा, अगर नहीं किया तो करना चाहिए चप्पल उतार कर, कि वास्तविक कितनी मुलायम है वहां की धूली, बहुत मुलायम। और अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे जहां पर टैल्कम पाउडर बनती है, आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो उसको फाइन 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 करने के लिए। लोग समझते हैं अरे ये तो ऐसे ही, कितनी मुलायम धूल है, अपने आप हुई होगी, अपने आप कुछ नहीं होता, हर एक चीज के पीछे एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। तो ये जो मुलायम धूली है ये गौओं की देन है, कि उनके मन में ये वात्सल्य भाव इतना आ गया कि नहीं नहीं नहीं, हम एक तो यशोदा माई को भी कष्ट नहीं देंगे और कन्हैया को भी कष्ट नहीं देंगे। तो ये प्रेम है यहां का। अब ये 9 लाख गायें, 9 लाख भी एक वैसे तो अनलिमिटेड होंगी लेकिन हमको समझाने के लिए भगवान की कोई चीज मर्यादित या सीमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें 4 वर्ण हैं, 4 कलर हैं, कोई गाय सफेद है, कोई लाल है, कोई पीली है और ब्राउन क्या कहेंगे, भूरी रंग की है। और इन 4 प्रमुख वर्ण या कलर के अंतर्गत 25 ग्रुप हैं, तो टोटल 100 ग्रुप हो गए, या कोई कैलकुलेशन कर 108 ग्रुप से उनके। तो जैसे भी है एक गायों का पूरा लॉजिस्टिकल कंट्रोल रखना ये एक बुद्धिमत्ता का काम है, और हर एक का अपना अपना रंग के अनुवर्ण के अनुसार उनका नाम है, हर एक का अपना नाम है। तो एक ग्वाल बाल का काम होता है कि पहले देखना कि सब गायें ठीक से चरती है कि नहीं, कहीं कोई इधर उधर ना जाए। तो गाय का काम, गाय की रखवाली करना बेसिकली सिंपल जॉब है, ज्यादा उसमें कोई बहुत पेचीदा मामला नहीं है, लेकिन कभी कभी कष्टप्रद हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि एक बार सुबह गाय को लेके गए किसी पेस्चरिंग ग्राउंड किसी ब्रज में और छोड़ दिए वहां पर, वो अपनी चल रही है, ये अपने आराम से खेल रहे हैं, फिर खाली शाम को सबको इकट्ठा करना और लेके आना, एक साथ लेके जाना एक साथ लेके आना। तो ये जो उनको सब एक साथ बुलाने का काम, ये ग्वाल बाल टेर लगाकर उनको बुला बुलाकर, और भगवान के पास एक काउंटिंग बीड्स भी है जिससे वो स्टॉक रखते हैं कि कौन कौन आई है कौन कौन नहीं आई है। कभी कभी पता चलता है कि अरे कोई नहीं आए, फिर वापस उनको बुलाना पड़ता है। तो हर एक गाय, भगवान जब अपनी मुरली बजाते तो उससे उनको अपना नाम सुनाई देता था। तो ये सब चीज इंटरलिंक्ड है, भगवान अपने मुरली से उनको बुला रहे हैं, कभी चिल्ला के बुला रहे हैं, और यही उनका जो प्रेम है ये इस टेर कदम जगह पर खास करके प्रकाशित हुआ। इन गोस्वामी ने ना तो कोई बड़े बड़े स्टेट बनवाया या अपने लिए कोई रहने के लिए कोई खास जगह बनाई, वो कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, लेकिन अलग अलग जगह पर उनकी उनकी भी कोई फेवरेट जगह होती थी, कोई प्रिय जगह होती जहां पर वो अपनी ग्रंथों की रचना करते थे। और खास करके रूप गोस्वामी जी के लिए ये टेर कदम जो कदम वृक्ष है वो खास प्रिय था। और यहां पर बैठकर जब वो राधा कृष्ण उनकी जो विप्रलंब भाव की जो लीलाएं हैं उनकी रचना करते, विप्रलंब यानी राधा और कृष्ण एक दूसरे से सेपरेशन, एक दूसरे से वियोग हो रहा है उनका, जैसे ललित माधव नाटक, तो ललित माधव नाटक की रचना करते हुए जब इतना करुण भाव है वो कि समय हो गया है अभी तक उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये कदंब वृक्ष भी अश्रुपात जैसे अपने एक एक पत्ते को झाड़ता था, नीचे पत्ते झड़ते थे उससे, कुछ ही समय में सारा जो पेड़ है उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं दिखाई देता था। और दान के लिए कौमुदी या बाकी जो ग्रंथ हैं जिसमें राधा कृष्ण के संभोग या उनके मिलन की चर्चा हो रही है, तो इतना उल्लासित होता था वो वृक्ष कि उसमें नए हरे पत्ते उमड़ाते थे। तो ये वृक्ष भी रूप गोस्वामी के साथ उनकी जो इमोशंस है, उनकी भावनाएं, उनके साथ उनका आदान प्रदान चलता था। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज ओम इष्टपाद भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर प्रभुपाद जी के बारे में कहते थे, उनका एक फेवरेट सेइंग था, उनकी एक अतिशय प्रिय कोटी थी, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, सर्व गॉड इन सच ए वे दैट ही वॉन्ट्स टू सी यू। भगवान के दर्शन की कामना मत कीजिए, भगवान की ऐसी सेवा कीजिए कि वो आपको देखने की कामना करें। और जो आजकल हम भारतवर्ष में या जो भी देखते हैं उससे बिल्कुल विपरीत है ये। कई हमारे प्रचलित भजन में तो है भगवान दर्शन दो दर्शन दो, और कोई कहेगा हमको भगवान ने दर्शन दिया, तो हम बोलेंगे आगे क्या हो गया, आगे कुछ नहीं। एक बड़े मायावादी थे, वो अपने प्रवचन में कहते थे कि ये वैष्णव लोग हमेशा वैकुंठ में जाकर भगवान को देखने की या भगवान को ऐसे अनमिश नेत्रों से उनको देखने की कामना करते हैं। बोले वही है वैकुंठ, क्या आप भगवान को देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, फिर आप भगवान को देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, आगे क्या। तो गौड़ीय वैष्णव विचार ऐसा है कि एक तो ये सरासर गलत है, वृंदावन में केवल ये एक काम नहीं होता कि कोई भगवान को देख रहा है या भगवान आपको देख रहे हैं, वहां तो आनंद रूप से एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं। और अगर किसी एक भक्त के जीवन में ऐसा ही प्रसंग हो कि आपके लिए और कोई काम नहीं है, आप भगवान को देखते रहे ना, भगवान आपको देखते रहेंगे, तो भी उसको इसमें उतना आनंद आएगा कि वो कहेगा कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, भगवान अपने आंखों से आपको इतना कुछ दे सकते हैं कि सारे अंगों का काम करेंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति से मिलना है, अगर उसको एम्ब्रेस करना है तो दूर से नहीं कर सकते, पास जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान अपने आंखों से कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी आदि छह गोस्वामी ने यही बात बार बार की है कि भक्ति ये कोई आपके भोग का काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है। और हर एक चीज में, यहां तक कि भगवान से जो कुछ आदान प्रदान हो, भगवान की कुछ कृपा हो, उसमें भी अगर किसी को ऐसे लगे कि इसमें मेरी अपनी कुछ भावना अंदर आ रही है, तो तुरंत उससे हटने के लिए तैयार है वो। इसका एक सुंदर दृष्टांत यही इसी जगह पर हुआ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये ऐसे बाबा जी टाइप कहीं भी बैठ गए, अपना जप में ध्यान लग गया या कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसे में एक दिन रूप गोस्वामी जी को एक छोटी सी लड़की ब्रजवासी की, यहां पर जिसको लाला लाली, लाली यानी छोटी लड़की, उन्होंने कहा बाबा बाबा। बोला क्या है लाली? बोला ये दूध लाई हूं आपके लिए। अक्सर दिखा जाता है कई लोग अपने घर से हरे कृष्णा
सब कहता है ऐसे, मेरे साथ नहीं होना चाहिए।
तो जैसे ये बाबा जी दंडवत, तो उन्होंने ऐसे दूध लाकर कह दिया कि ये आपके लिए दूध है। तो अक्सर कई ब्रजवासियों के घर में ये प्रणाली है कि शाम को दूध दोहन कर दिया तो थोड़ा सा दूध लेकर और निकल पड़ते हैं कि कोई अगर कोई बैठा रहेगा। कई बाबा हैं जो कई बैरागी है जो कुछ मांगेंगे नहीं, किसी के पास कुछ नहीं मांगेंगे, भले भूख लगी नहीं लगी हो, तो उनको ढूंढना पड़ता है कि कोई किसी कोने में, कहीं किसी कुंड के पीछे कोई बैठा है, बोले बाबा कुछ लेंगे? तो कहेंगे ठीक है, अभी आप आए हो तो थोड़ा सा ले ही लेते हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भजन था, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा लीजिए। तो उन्होंने कहा अभी नहीं नहीं ठीक है, आप खीर बनाइए। एक कहानी का वर्णन ऐसे कि उन्होंने खुद ही, जो लड़की थी उसने खुद थोड़ी सी आग जलाकर उसमें वो दूध रखा, फिर उसमें चावल और शक्कर वगैरह डालकर उसकी खीर बना दी और बोली अभी आप ये लीजिए। तो ये सब ऐसे अचानक हो गया। तो उन्होंने कहा अरे अक्सर कभी ऐसे होता नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बड़े भ्राता सनातन गोस्वामी निकट हैं तो उनको भी बुलाए इसमें। तो उन्होंने कहा ये ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा आपके पास खीर? ठीक है अभी चखते हैं। और जैसे ही एक बूंद उन्होंने अपनी जीवा पे रखी, बोले अरे कौन थी वो, कौन थी वो लड़की? तो उन्होंने कहा ये गांव में आसपास किसी की? बोले नहीं, ये बड़ी गलती की हमने। बोले क्या हो गया? बोले अरे ऐसी खीर तो हम कभी नहीं चखे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्वयं श्री जी है, ये स्वयं राधा रानी है और हमने गलती की उनसे सेवा लेकर। वो चर्चा कर रहे हैं लेकिन खीर भी खा रहे हैं क्योंकि उसका स्वाद ऐसा अनुपम, ये तीनों जगत में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा स्वाद था उसका, क्योंकि स्वयं उनके हाथों से परोसा हुआ व्यंजन है वो। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की देन है कि कभी किसी, जैसे प्रभुपाद जी को एक बार, प्रभुपाद जी इलाहाबाद के कुंभ मेले के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुंभ मेला खास करके वहां पे तो मायावादी नरेशवादी आते हैं अपने बड़े बड़े हाथी पर बैठकर, अभी तो ट्रैक्टर लेके आते हैं, हाथी का जमाना भी गया। तो आए सब बड़े बड़े 1008 और 10008 और जो भी कुछ होगा, महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु हो गए, एक 10x12 आश्रम के लीडर वहां के, लेकिन फिर भी अपने आपको जगत गुरु कहते हैं। तो प्रभुपाद जी को शिष्यों ने कहा कि आपको भी हम एक बड़े हाथी पर रखेंगे क्योंकि आप भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानंद संघ के आप संस्थापक आचार्य हैं, तो आप भी चलिए। प्रभुपाद जी ने कहा हम चलेंगे लेकिन हाथी पर राधा कृष्ण को रखेंगे, हम नीचे चलेंगे। तो स्वयं ये जो लेगेसी है, ये जो जैसे जिस प्रकार से ये धरोहर है गोस्वामियों की, ये उनके अनुचर होने के नाते हमें ठीक ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए। कई लोग हैं जो दृष्टांत की बातें कहते कि हाँ मेरे सपने में शायद कृष्ण आए या राधा रानी आई थी, उन्होंने स्वयं मुझे कह दिया। प्रभुपाद जी ने कहा वो गोस्वामी का स्टैंडर्ड देखो, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते नंद सुनो कुतः, कहाँ हैं आप यहां हो कि वहां हो, कि वहां हो कि वहां हो, घोषणताव इति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर, खेद यानी घोर निराशा, महाविवलो, इतने डिसअपॉइंटेड है वो अपने आप में। अच्छा कोई कहेगा ये क्या संभव है आपका, ये तो क्या भाई ये डिसअपॉइंटमेंट लेके चलना है जिंदगी भर कि हमें कभी कोई नहीं मिलेगा, कभी कोई नहीं मिलेगा? हम कहेंगे हां, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम निगेटिविटी है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझमें कुछ अच्छे गुण नहीं है, यही भगवान को आकर्षित करेगी। जैसे एक गौड़ीय सन्यासी बताते हैं कि फिजिक्स का भी लॉ ऐसे ही है, अगर कोई बड़ा पॉजिटिव है, उस बड़े पॉजिटिव के सामने थोड़ा पॉजिटिव लाए तो क्या होगा, वो छोटे को करके डिफ्लेक्ट कर देगा, दूर जाएगा वो। तो भगवान समस्त गुण संपन्न, समस्त गुण गण धाम हम सुबह सुबह गाते हैं, तो उनके सामने अगर हम कहेंगे मुझमें ये गुण है, मैं वैसे अच्छा हूं लेकिन क्या करूं, गलत कंपनी में पढ़ा हूं लेकिन ये ऐसा है वो ऐसा इसलिए मैं ऐसा हूं, नहीं, अगर हम थोड़ा सा भी अपना गुणगान करेंगे या अपने मन में भी सोचेंगे अपने आप में कि मैं वास्तविक तो इतना बुरा नहीं हूं, तो वो जो पॉजिटिव है वो उसको दूर भगा देगा, इतना दूर के वापस आने सके। लेकिन जब एक बड़े पॉजिटिव के सामने एक बड़ा विशाल निगेटिव फोर्स आ जाएगा तो क्या होगा, एकदम अट्रैक्शन हो जाएगा बंदे। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने बारे में गाते हैं कि मैं कोई गुण नहीं है, हमारा जीवन सदा पापे रत, सदा पाप करता हूं, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना क्यों, स्टॉप बस करो अभी, ये नहीं, ये कोई उनका कोई पेशा नहीं है केवल ऐसे ही रोना, ये उनके मन की जो अभिलाषा है ये बाहर आती है। गौर गोविंद महाराज के बारे में गौरखपुर ने बताया अभी, तो एक उनका बड़ा फेवरेट एग्जांपल था कि बड़ा ग्राफिक एग्जांपल है वो, एक कोई व्यक्ति अगर कुछ खाया है और कहेगा कि पेट में बहुत कुछ हो रहा है, अंदर गड़बड़ हो रही है, बाद में एक ओ, 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 सब बाहर आ गया वॉमिट होकर, तो हमें पता चलता है कि ये खाया था तूने, हैं? अगर किसी ने कुछ बाहर का कुछ खाया होगा, नहीं, किसने बोला था खाने को, ये तू गया था बाहर खाने, तो उस वमन से, उस वॉमिट से पता चलता है कि ये क्या खाया है। तो खास करके वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं, लेकिन उनके जो जो गुरुवर्ग है उनके बारे में भी यही कह सकते हैं कि वो जो बार बार जो सोचते हैं, जो उनके मन की पूरी अभिलाषा है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, वो कि जब वो ऐसे उन्मत्त ग्रस्तव प्रमत्तव सदा, ग्रस्त यानी ऐसे कोई कन्फर्म्ड इनसेन कि ये अभी धुत पागल हो गया, अभी ये व्यक्ति को उसका कोई अभी बाहर आने का कोई चांस नहीं है, ऐसे ग्रस्तो प्रमत्तो, और उसमें वो जो बकता है कोलोकियल लैंग्वेज में जो बोलता है वो, तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर उसके मन में क्या हो रहा है वो। जैसे कई व्यक्ति होंगे ये पागल है, लेकिन अगर मैं उसे सोचेंगे सुनेंगे क्या कह रहा है वो, मैं उसे कह दिया कि 10 लाख रुपए दूंगा तेरे, मैं अभी है कुछ नहीं, लेकिन वो मतलब क्या, किस चीज ने उसे पागल बना दिया है कि उसे इच्छा है कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, या उसको तो मार दूंगा मैं, तो उसको मारने की इच्छा है ना, पागल तो ऐसा नहीं, मर तो नहीं गया वो, खाली पागल हो गया, उसके मन की जो इच्छा है वो दुनिया का जो सत्य है उससे सहा नहीं जाता, तो वो अपने अंदर ही चला गया, अपना सत्य बना दिया, फॉल्स रियलिटी। तो वैसे ही ये गोस्वामी गण जो उन्होंने वॉमिट कर दिया पूरा, दिस इज वॉट दे यूज टू ईट, यही उनका आहार है, यही वो खा रहे थे वो, और इसलिए अलग अलग जगह पर उनके इससे वो पूरा आ गया। तो खास करके रूप गोस्वामी ने तो इतनी प्रचुर ग्रंथ रचना की है, प्रमुख रूप से हम सब श्री प्रभुपाद जी के इस्कॉन के सदस्य, हमारे लिए प्रमुख है उपदेशामृत, जो तो हमको जरूर बारंबार पढ़ना है, उसे कंठस्थ करना है और जीवन में उतारना भी है, फिर भक्ति रसामृत सिंधु, और आगे आगे ऊपर उन्होंने ललित माधव नाटक, विदग्ध माधव, फिर दान की ली कौमुदी, उज्ज्वल नीलमणि, ये सब ग्रंथ तभी हमारे सामने, अभी सामने होंगे तो भी हम क्या समझेंगे उनको। तो जैसे हमारी हमारा साक्षात्कार बढ़ेगा, जैसे हमारी हम लायक होंगे उससे, अपने आप आएंगे उसमें, हम ऐसी कोई बात नहीं है कि क्योंकि ये हमारे ग्रंथ इसलिए अभी हमें उसे पढ़ना चाहिए, नहीं। जैसे कोई टाइफाइड पेशेंट है और उसको रबड़ी सामने आए तो ये मेरी खीर है मैं खाऊंगा या मेरी रबड़ी मैं खाऊंगा, लेकिन आपके पेट की हालत कैसी है, तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत भी दिया है और नेक्टर ऑफ डिवोशन करके जो समरी स्टडी भक्ति रसामृत सिंधु का वो भी दिया है, और खास करके उन्होंने जो पहले 1 से 19 अध्याय हैं, प्रथम लहरी, उत्तर लहरी जो है, फर्स्ट वेव, वो हमारे लिए खास खास उन्होंने रिकमेंड किया है। श्रील प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ रचना का जो कार्यक्रम था वो भी ये गोस्वामी जैसा ही था। अगर 10-10:30 बजे प्रभुपाद जी सोते थे तो ठीक 12:30 या 1:15 बजे उठते थे और 1 बजे से 4:30 बजे तक उनका ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद का काम चलता था। इसका मतलब जो भी हम बुक्स हम देखते हैं वो कोई किसी ने ऐसे ही अपना समय व्यतीत करने के लिए लिखी नहीं है। जब सारा समाज सोया हुआ है, जब कोई प्रभुपाद जी को मैनेजमेंट या और कोई इश्यूज में कोई खींचने की कोई चांस नहीं है, इस माहौल में प्रभुपाद जी ने अपना जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन, और जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि दीज बुक्स आर माई प्राइवेट एक्सटसीज, ये मेरा निजी हृदय का आह्लाद आनंद है ये। और एक बार प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच में हरे कृष्ण मंत्र के जप के बारे में चर्चा चल रही थी और क्वालिटी चैंटिंग वो क्या होती है, तो प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी का एक श्लोक उद्धृत किया जिसमें वो कहते हैं कि ये क्या मामला है ये कृष्ण नाम, एक बार अगर कृष्ण बोलूं मैं तो जब मेरे जिह्वा प्रांगण में वो नाम प्रवेश करता है वहां नाचता है, वो उसके नृत्य से सारे मेरे इंद्रियों की अन्य कृतियां एकदम निश्चिष्ट हो जाती है, जैसे किसी को मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया तो वो पूरा अनकॉन्शियस हो गया, तो ये कृष्ण का नाम करता है मेरे लिए, मतलब हमारे बिल्कुल विपरीत। वो कहते हैं कि अगर कृष्ण नाम लूं तो मेरे बाकी इंद्रिय काम करना ही बंद करते हैं, और एक बार वो कर्ण में प्रवेश कर दिया तो मैं चाहता हूं कि मेरे ऐसे लाखों लाखों कर्ण हो, लाखों लाखों जीवा हो जिससे मैं ये एक नाम ले सकूं। ये एक जीवा काम की नहीं है, क्या कैपेसिटी नहीं है एक जीवा की, मुझे ये नाम को ठीक ढंग से, उसको ठीक ढंग से उसका स्वागत करने के लिए लाखों लाखों जीवाएं चाहिए, और लाखों लाखों जीवाओं द्वारा वाइब्रेट किया हुआ वो नाम, उसको सुनने के लिए लाखों करोड़ों कान चाहिए। प्रभुपाद ने कहा दिस इज क्वालिटी, और फिर प्रभुपाद ने अपनी तरफ बता के कहा कि मैं जब ये ग्रंथ आपको दे रहा हूं, क्या आप लोगों से कोई मुझे पैसा दे रहा है कि आप और किताब छापो और किताब का अनुवाद करो, क्यों कर रहा हूं फिर मैं, क्या है मेरे लिए प्रेरणा कि इतने सुबह 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1-2 दिन नहीं, हम भी कभी कभी मैराथन करेंगे 1-2 दिन के लिए, बाद में 2 दिन। प्रभुपाद जी का ऐसे नहीं था, 70-72-74 साल के प्रभुपाद जी और उनके साथ चलने वाले 24-25-30 साल के जवान, उनके जीबीसीज और सर्वेंट्स, और जैसे हुआ इधर इंडिया से सिंगापुर गए, सिंगापुर से मेलबर्न गए, 2-3 घंटे सिंगापुर में स्टॉप ओवर, फिर मेलबर्न में सुबह सुबह 3:30-4 बजे पहुंचे, और बाकी सब लोग तो जेटला के कारण पूरे फ्लैट हो गए। प्रभुपाद जी गए, अपना स्नान किए और मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार। तो ये कहां से आती है स्ट्रेंथ या ये शक्ति कहां से आती है, तो प्रभुपाद जी कहते कि ये है क्वालिटी। क्वालिटी यानी कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको पूछे नहीं, आपको अंदर से ही वो प्रेरणा आनी चाहिए। तो गोस्वामियों ने, खास करके रूप गोस्वामी ने अपने नाम द्वारा, अक्सर हम लोग पूछते हैं कि ये नाम गिनने की आवश्यकता क्या है, 16 माला क्यों, 12 क्यों नहीं है, 24 क्यों नहीं, ये संख्या कहां से आ गई, गोस्वामियों से। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, प्रभुपाद जी कई बार उनके पत्रों में या कभी उनकी चर्चा में वो कहते थे कि ज्यादा चर्चा या ज्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक बार पता चल गया कि ये गोस्वामी किस कोटि के लोग हैं, सेवा करो उनकी बस। यीशु से आई डोंट वांट एक्सपर्ट्स, आई जस्ट वांट फॉलोअर्स। ऑफकोर्स ब्लाइंड फॉलोइंग इज नॉट गुड, प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे केवल कोई निष्णात लोगों की आवश्यकता नहीं है, अच्छे अनुयायियों की आवश्यकता है। तो हम क्यों नाम गिनते हैं? क्योंकि जिन अथॉरिटीज ने, जिन वरिष्ठों ने हमको ये बताया है, वो खुद उस अवस्था में भी वो नाम गान, संख्या पूर्वक नाम गान करते थे। तो वी विल स्टॉप हियर, हम यहीं पे कथा को विराम देंगे। हम अभी 1:02 हुआ है मेरे घड़ी में इधर, हम यहां पर अभी बसेस में जाएंगे और नंद भवन वहां पर दर्शन करके, फिर पावन सरोवर, फिर वहां से स्नान।